एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में झांक रहे हैं जो, सच कहूं तो, रहस्य और जटिलता का दूसरा नाम है।
हाँ, थॉमस पिंचन।
बिल्कुल। और उनकी जिस रचना पर हम बात करेंगे वो 1966 में आई थी, द क्राइंग ऑफ लॉट 49।
ये उनका दूसरा उपन्यास था और सबसे छोटा भी।
हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि पिंचन के विशाल साहित्यिक संसार में घुसने का ये सबसे आसान रास्ता है, पर आसान कहना शायद ठीक नहीं होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। है तो छोटा पर इसमें परते बहुत हैं। और इसकी सेटिंग भी देखिए, 1960 का कैलिफोर्निया।
गजब का दौर था वो।
हाँ, मतलब एक तरफ काउंटर कल्चर, उम्मीदें, भविष्य को लेकर सपने,
और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर, एक व्यामोह जिसे पैरानोया कहते हैं, सब कुछ एक साथ।
सही कहा। और इसी माहौल में पिंचन एक कहानी बुनते हैं। लगती तो ये किसी जासूसी कहानी जैसी है,
पर है नहीं, है ना।
हाँ, या कह लीजिए कि ये जासूसी कहानी के भेस में है। असल में ये अमरीकी समाज पर, कम्युनिकेशन पर, मतलब की तलाश पर एक गहरा कटाक्ष भी है, एक सोच भी।
तो आज हम इसी उपन्यास के ताने बाने को खोलने की कोशिश करेंगे। ओडिपा मास की यात्रा, वो अजीब किरदार।
हाँ, और वो थीम्स जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे एंट्रोपी, पैरानोया,
और वो बड़ा सवाल, क्या इस उलझी हुई दुनिया में वाकई कोई छिपा हुआ मतलब है।
बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ओडिपा मास से।
हाँ, बताइए कौन है ओडिपा मास।
तो कहानी हमें मिलवाती है ओडिपा मास से। वो कैलिफोर्निया के एक शांत उपनगरीय इलाके में रहती है। जिंदगी बिल्कुल सेट है।
मतलब?
पति है मुचो मास, वो एक रेडियो डीजे है, घर है, आराम है।
लेकिन?
लेकिन ओडिपा को अंदर ही अंदर एक खालीपन सा लगता है, एक बोरियत, जैसे सब कुछ रंगहीन हो गया हो।
ये नाम ओडिपा मास, इसमें भी कुछ छिपा है क्या?
लगता तो है। ओडिपा से फौरन ग्रीक मिथक के ईडिपस की याद आती है, वो जो पहेलियां सुलझाता था
और खुद ही एक पहेली में उलझ गया।
बिल्कुल। और मास, इसका मतलब भीड़ भी हो सकता है या और ज्यादा की चाहत भी। शायद पिंचन शुरू से ही इशारा कर रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है,
ये आधुनिक इंसान की कहानी है जो मतलब ढूंढ रहा है।
हाँ, एक तरह से। और फिर ओडिपा की इस शांत जिंदगी में एक हलचल होती है। उसे एक चिट्ठी मिलती है।
चिट्ठी? किसकी?
खबर मिलती है कि उसका एक पुराना प्रेमी था, पियर्स इनवेरारिटी।
इनवेरारिटी, ये नाम भी अजीब है।
हाँ, पिंचन का यहाँ कुछ भी सीधा नहीं होता। तो ये इनवेरारिटी, जो एक बहुत अमीर, बड़ा प्रभावशाली और थोड़ा सनकी किस्म का रियल एस्टेट डेवलपर था, वो मर गया है।
ओह।
और सबसे अजीब बात ये कि इनवेरारिटी ने अपनी वसीयत में ओडिपा को अपनी बहुत बड़ी और बेहद उलझी हुई जायदाद का को एग्जीक्यूटर बना दिया है।
ओडिपा को क्यों?
ये भी एक रहस्य है। तो अब इस जिम्मेदारी के लिए ओडिपा को अपनी सेफ दुनिया से निकलना पड़ता है।
कहाँ जाना होता है उसे?
दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक काल्पनिक शहर है, सैन नार्किसो। ये शहर इनवेरारिटी के बिजनेस एम्पायर का सेंटर था।
सैन नार्किसो, नार्सिसस का शहर, जो अपने ही अक्स से प्यार करता था।
बिल्कुल। लगता है पिंचन इस शहर के जरिए 60s के दशक के अमेरिकी समाज के आत्ममोह पर भी टिप्पणी कर रहे हैं।
तो ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है?
नहीं, ये एक तरह की अंदरूनी खोज भी है। सच क्या है, भ्रम क्या है। ओडिपा एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जहाँ शायद कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है।
तो सैन नार्किसो पहुंचकर क्या होता है?
वहाँ उसकी मुलाकात होती है मेट्जगर से। वो वकील है, जायदाद का दूसरा एग्जीक्यूटर, और वो पहले चाइल्ड स्टार भी रह चुका है।
अच्छा, बड़ा दिलचस्प किरदार लगता है।
कोई पुरानी फिल्म देखते हैं एक शाम, और अजीब तरह से फिल्म की कहानी उनकी असलियत से मिलने लगती है।
कल्पना और यथार्थ घुलने लगते हैं।
बिल्कुल। लेकिन पहला ठोस रहस्यमयी सुराग उन्हें तब मिलता है जब वो इनवेरारिटी का स्टैम्प कलेक्शन देख रहे होते हैं।
डाक टिकटों का संग्रह?
हाँ, बहुत बड़ा कलेक्शन था, और उसमें कुछ टिकटों पर उन्हें एक अजीब सा निशान दिखता है।
कैसा निशान?
एक म्यूटेड पोस्ट हॉर्न, मतलब एक बिगुल जैसा जिसके मुंह पर आवाज दबाने वाला म्यूट लगा हो।
म्यूटेड पोस्ट हॉर्न, विरोधाभासी है ये तो। पोस्ट हॉर्न मतलब कम्युनिकेशन, संदेश, और उस पर म्यूट।
हाँ, यही से शक का बीज पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या किसी छिपे हुए कम्युनिकेशन, किसी साजिश का संकेत?
पिंचन यहीं से हमें उस दुनिया में खींचते हैं जहां हर संकेत के कई मतलब हो सकते हैं,
या शायद कोई मतलब ना भी हो,
और ये निशान ओडिपा को जाने नहीं देता।
हाँ, उसके दिमाग में अटक जाता है, उसे लगता है ये कोई चाबी है किसी गुप्त संदेश की, और यहीं से उसकी सीधी सादी जिंदगी एक रहस्य की खोज बन जाती है।
वो इसकी तलाश में कहाँ जाती है?
उसकी खोज उसे एक एरोस्पेस कंपनी योयोडाइन के बार तक ले जाती है। ये कंपनी भी इन्वेरारिटी की थी।
और वहाँ?
वहाँ बार के बाथरूम की दीवार पर उसे वही निशान फिर दिखता है।
म्यूटेड पोस्ट हॉर्न।
वही निशान, और इस बार उसके साथ कुछ लिखा भी है, WASTE,
वेस्ट, कचरा।
या ये किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है? एक और पहेली।
बिल्कुल।
ओडिपा जैसे किसी खरगोश के बिल में और गहरे उतरती जा रही है।
इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ओडिपा एक नाटक देखने जाती है।
नाटक?
हाँ, 17वीं सदी का एक काल्पनिक जैकोबियन प्ले है, द कुरियर्स ट्रेजेडी।
अच्छा,
उसमें क्या खास है?
नाटक तो खैर हिंसा और साजिशों से भरा है, जैसा उस जमाने के नाटक होते थे, लेकिन ओडिपा के होश तब उड़ जाते हैं।
क्यों?
जब नाटक में दो विरोधी पोस्टल सर्विस का जिक्र आता है, और उनमें से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्रिस्टेरो।
ट्रिस्टेरो?
हाँ, और उनका प्रतीक चिन्ह है वही म्यूटेड पोस्ट हॉर्न।
क्या बात है, मतलब बाथरूम की दीवार वाला निशान 400 साल पुराने नाटक से जुड़ गया।
जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इन्विरालिटी का कोई खेल, या फिर
ट्रिस्टेरो वाकई कोई सदियों पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है?
बिल्कुल, यही पिंचन इतिहास और वर्तमान के बीच एक अजीब सा रहस्यमयी पुल बना देते हैं। अतीत की गूंजें कैसे वो आज भी हमें प्रभावित कर सकती हैं छुपे हुए तरीकों से?
ये तो दिमाग घुमा देने वाला है।
ओडिपा अब क्या करती है?
अब तो वो इस रहस्य में पूरी तरह खो जाती है। वो नाटक के डायरेक्टर से मिलती है, हिस्टोरियन से बात करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ट्रिस्टेरो का जिक्र असली नाटक में था भी या नहीं।
और कुछ पता चलता है?
कुछ धुंधले से इशारे मिलते हैं कि शायद ट्रिस्टेरो कभी यूरोप में जो स्थापित थर्न और टैक्सेस पोस्टल सर्विस थी, उसके खिलाफ लड़ने वाला एक असली विद्रोही ग्रुप था।
तो कहानी और उलझ जाती है, इतिहास, कल्पना, अफवाहें, सब मिक्स होने लगता है।
हाँ, और ओडिपा के लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या उसके मन का वहम।
उसे और क्या सुराग मिलते हैं?
सुराग तो बहुत तेरी से मिलते हैं, पर हर सुराग नए सवाल खड़े कर देता है। वो योयोडाइन के एक इंजीनियर से मिलती है, स्टैनली कॉटेक्स।
अच्छा, वो क्या बताता है?
कॉटेक्स कन्फर्म करता है कि WASTE का मतलब है वी अवेट साइलेंट ट्रिस्टेरोस एम्पायर। हम ट्रिस्टेरो के मूक साम्राज्य का इंतजार कर रहे हैं।
ओह।
वो बताता है कि ये एक तरह की अंडरग्राउंड इनफॉर्मल पोस्टल सर्विस है, जिसे कंपनी के लोग ऑफिशियल चैनलों से बचकर आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एक पैरेलल सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये आइडिया ही 60 के दशक के माहौल से मिलता है, जब सिस्टम पर भरोसा कम था।
बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच है या सिर्फ इंजीनियरों का कोई मजाक या सामूहिक वहम?
ओडिपा इसी चक्कर में फंसी रहती है।
हाँ, और वो और भी अजीब अजीब ग्रुप से मिलती है जिन्हें वो मजाक में द पैरानॉइड्स कहती है।
जैसे?
जैसे पीटर पिंगुइट सोसाइटी है, जो दक्षिणपंथी ग्रुप्स का मजाक उड़ाती है, या इनमोराटी एनोनिमस, ये उन लोगों का ग्रुप है जो प्यार में पड़ने से बचना चाहते हैं।
क्या गजब के ग्रुप्स हैं।
हाँ, और ये सब किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या वैकल्पिक इतिहास में यकीन करते लगते हैं। वो ओडिपा को कुछ और बिखरे हुए सुराग तो देते हैं,
लेकिन साथ ही ये सवाल भी गहरा करते हैं कि कहीं ये सब सिर्फ पागलपन तो नहीं, कहीं लोग बेकार की चीजों में मतलब तो नहीं ढूंढ रहे।
बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना।
यहीं पर पिंचन हमें पैरानोया के नेचर पर सोचने को मजबूर करते हैं। क्या ये हमेशा एक बीमारी है,
या फिर आज की दुनिया में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, जहां पावर स्ट्रक्चर इतने ओपेक हैं, क्या ये ज्यादा अवेयर होने की निशानी भी हो सकती है?
क्या ओडिपा वाकई कोई पैटर्न खोज रही है, या सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रही है जो असल में जुड़े ही नहीं है?
हाँ, और यहीं पिंचन का एक और फेवरेट थीम आता है, एंट्रोपी बनाम इन्फॉर्मेशन।
एंट्रोपी यानी बिखराव, अव्यवस्था की तरफ झुकाव।
सही, तो क्या ओडिपा इस एंट्रोपी भरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन यानी मतलब खोज रही है, या उसकी खोज ही उसे और बिखेर रही है?
कमाल की बात है कि जानकारी की खोज ही आपको और कंफ्यूज कर सकती है।
बिल्कुल, और ये खोज, ये कंफ्यूजन ओडिपा पर भारी पड़ने लगता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ बिखरने लगती है।
कैसे?
उसका पति मूंछो, वो LSD लेने लगता है और दुनिया से एक अजीब तरह से जुड़ जाता है, पर ओडिपा से कट जाता है।
ओह,
उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हिलेरियस, नाम देखिए, वो खुद पागल हो जाता है।
क्या?
हाँ, उसे लगता है वो नाजियों का डॉक्टर था और इजरायली एजेंट उसे ढूंढ रहे हैं। मतलब ओडिपा के सपोर्ट सिस्टम एक एक करके ढह जाते हैं।
शादी, परिवार, यहाँ तक कि साइकियाट्री, कोई उसे सहारा नहीं दे पाता। वो एकदम अकेली रह जाती है।
हाँ, इस रहस्य की भूल भुलैया में बिल्कुल अकेली और बहुत डरी हुई।
अब वो क्या करती है?
अकेली और अस्थिर सी वो एक साइंटिस्ट से मिलने जाती है, जॉन नेफेस्टस।
नेफेस्टस, उसने क्या किया है?
नेफेस्टस ने एक मशीन बनाई है जो मैक्सवेल के डीमन के आइडिया पे बेस्ड है।
मैक्सवेल का डीमन? वो काल्पनिक जीव जो अणुओं को छांटकर एंट्रोपी कम कर सकता है।
हाँ, नेफेस्टस की मशीन का दावा है कि वो सेंसिटिव लोगों की मदद से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके ऐसा कर सकती है, अव्यवस्था से व्यवस्था बना सकती है।
ये मशीन तो ओडिपा की खोज का मेटाफर बन गई, शोर में से सिग्नल निकालना।
हाँ, बिल्कुल, पर क्या वो मशीन काम करती है?
मुझे नहीं लगता।
नहीं, मशीन के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश फेल हो जाती है। जैसे ये कहना हो कि शायद साइंस या टेक्नोलॉजी भी हमें आखिरी सच नहीं बता सकते।
इसके बाद ओडिपा का क्या होता है?
इस नाकामी के बाद हताश और दिशाहीन वो रात में सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर भटकने निकल पड़ती है। ये शायद नॉवल का सबसे पोएटिक और दिल को छूने वाला हिस्सा है।
वो क्या देखती है उन सड़कों पर?
रात के अंधेरे में शहर में घूमते हुए उससे हर जगह, दीवारों पर, कूड़ेदानों पर, लोगों के कपड़ों पर, बच्चों की चाक ड्राइंग्स में, हर जगह वही निशान दिखता है, म्यूटेड पोस्ट हॉर्न।
हर जगह, इसका क्या मतलब निकालती है वो?
उसे धीरे धीरे एक एहसास होता है कि शायद ट्रिस्टेरो सिर्फ कोई पुरानी साजिश या अंडरग्राउंड पोस्टल सर्विस नहीं है।
तो फिर क्या है?
शायद ये उन सब का प्रतीक है जो समाज के हाशिए पर है, जिनकी आवाज दबा दी गई है, जो मेनस्ट्रीम से बाहर हैं, बेघर, नाराज लोग, बागी, सपने देखने वाले।
अच्छा, तो ये उन सब का एक अनकहा नेटवर्क है।
हाँ, जो ऑफिशियल अमेरिका के पैरेलल अपनी दुनिया में जीते हैं। पिंचन की एक लाइन है जो ओडिपा की उस रात की हालत बताती है। पदानुक्रमिक सड़कों के पीछे या तो एक पारलौकिक अर्थ होगा या केवल पृथ्वी।
वाह, ये तो बहुत गहरा मोड़ है। बाहर के रहस्य की खोज अब उसके अंदर की यात्रा बन गई है।
बिल्कुल, वो हाशिए पे पड़े लोगों से जुड़ाव महसूस करती है, पर यह एहसास उसे सुकून नहीं देता, शायद और अकेला कर देता है। नॉवेल में कहा गया है कि उसकी याददाश्त के सजे सजाए कमरे हिंसक रूप से फाड़ दिए गए, हिलाए गए, एक ढेर में फेंक दिए गए हैं।
ज्ञान की खोज की कीमत, उसका अपना वजूद बिखर रहा है।
हाँ, और ये कम्युनिकेशन फेलियर का भी पीक है। जब सारे ऑफिशियल चैनल फेल हो जाते हैं तो लोग सीक्रेट इशारों में बात करने लगते हैं।
अब कहानी कहाँ जाती है? क्या कोई क्लाइमैक्स है?
कहानी एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। ओडिपा की जांच के सारे धागे एक जगह कर मिलते हैं, एक नीलामी में, ऑक्शन में।
ऑक्शन? किस चीज का?
पियर्स इनवेरारिटी की जायदाद से कुछ रेयर स्टैम्प्स नीलाम होने वाले हैं, और उनमें एक खास लॉट है, लॉट 49।
लॉट 49?
हाँ, माना जाता है कि लॉट 49 में वो स्टैम्प्स हैं जो शायद ट्रिस्टरो ने कभी जाली बनाए थे।
तो डिपा को लगता है कि यहाँ उसे जवाब मिलेगा।
हाँ, उसे पक्का यकीन है कि ट्रिस्टरो का कोई ना कोई आदमी इन टिकटों को खरीदने जरूर आएगा, ताकि उनका राज बना रहे। उसे लगता है ये ऑक्शन ही सब कुछ साफ कर देगा, पर्दा उठ जाएगा।
पाठक भी इंतजार करता है अब क्या होगा।
सब सांस रोक कर इंतजार करते हैं।
लेकिन पिंचन जवाब देते हैं क्या?
हाँ, यही पिंचन सबसे बड़ा खेल करते हैं। उपन्यास ठीक उस पल खत्म होता है जब नीलामी शुरू होने वाली है।
क्या?
ओडिपा ऑक्शन रूम में बैठी है, चारों तरफ काले सूट पहने अजीब से लोग हैं। कौन है ये? ट्रिस्टरो के एजेंट, सरकारी जासूस, या सिर्फ स्टैम्प कलेक्टर?
और
ऑक्शनियर लॉट 49 की बोली लगाने वाला है। उसकी पुकार को ऑक्शन की भाषा में क्राइंग कहते हैं। ओडिपा इंतजार कर रही है द क्राइंग ऑफ लॉट 49 का। और किताब खत्म।
खत्म, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं पता चला। पाठक को बीच में लटका दिया।
बिल्कुल, ये कमाल की फ्रस्ट्रेशन है या शायद कमाल की कला।
हाँ,
पिंचन जानबूझकर हमें रीडर को ओडिपा की ही तरह पूरी अनिश्चितता में छोड़ देते हैं। शायद यही नोवेल का सबसे गहरा मैसेज है
कि जिंदगी की कुछ पहेलियों के जवाब शायद होते ही नहीं हैं।
हाँ, या अगर होते भी हैं तो वो इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। ये ट्रेडिशनल डिटेक्टिव कहानी का मजाक भी है, जो रहस्य बनाकर उसे सुलझाने का वादा करती है, पर यहाँ वादा टूट जाता है।
ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि वो खुद तय करे क्या सच है, क्या वहम।
बिल्कुल, क्या ट्रिस्टेरो सच है या ओडिपा का बनाया हुआ पैटर्न या कुछ और ही।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो कौन से मुख्य थीम्स उभर कर आते हैं? एक तो जाहिर है पैरानोया और कॉन्स्पिरेसी।
हाँ, उसके अलावा एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन का टेंशन। क्या दुनिया बिखर रही है या हम उसमें मतलब खोज सकते हैं?
मॉडर्न सोसाइटी में मतलब की तलाश।
हाँ, खासकर जब धर्म, साइंस जैसे पुराने सहारे जवाब नहीं दे पाते। कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे फेल होता है?
और सबसे बढ़कर अनिश्चितता, एम्बिग्विटी, उसे स्वीकार करना।
सही। और पिंचन की स्टाइल, वो भी तो अपने आप में एक पहेली है।
हाँ, वो भी अनोखी है। थर्ड पर्सन लिमिटेड व्यू, हम सिर्फ ओडेपा के दिमाग में रहते हैं।
बिल्कुल। और भाषा का मिक्सचर, कहीं एकदम मुश्किल अकादमिक शब्द, कहीं 60s की स्लैंग, कहीं साइंस, और कहीं अचानक बहुत खूबसूरत पोएटिक भाषा।
पात्रों के नाम भी अजीब है, हिलेरियस, नेफास्टस, व्यंग्य है पर उदासी भी है।
हाँ, एक बेचैनी सी है। और वो म्यूटेड पोस्ट हॉर्न जैसा सिंबल, जिसके इतने मतलब निकाले जा सकते हैं कि वो खुद एक रहस्य बन जाता है।
इस उपन्यास का पाठक पर क्या असर होता है? क्या वो सिर्फ उलझन में रह जाता है आखिर में?
उलझन तो होती है, पर ये एक एक्टिव उलझन है, एक मेंटल चैलेंज। आप ओजीबा के साथ सुराग जोड़ते हैं, पर अंत में उसी की तरह अनिश्चितता में रह जाते हैं।
ये नॉवल आज के जमाने में, जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं, शायद और भी रेलेवेंट लगता है।
हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं, सच और झूठ का फैसला कैसे करते हैं, क्या हम पैटर्न खोजते हैं या हम उन्हें बनाते हैं।
क्या ये हमें ज्यादा शक्की बना देता है?
शायद थोड़ा शक्की, पर ज्यादा जागरूक भी, कि चीजों को ऊपरी तौर पर ना देखें, कि संकेतों के कई मतलब हो सकते हैं।
ये याद दिलाता है कि दुनिया शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं।
हाँ, ओडिपा की खोज उस गहरी इंसानी प्यास को दिखाती है जो हर चीज में मतलब खोजना चाहती है, लेकिन साथ ही उस डर को भी कि शायद कोई गहरा मतलब है ही नहीं।
शायद अर्थ खोजने की ये यात्रा ही अपने आप में अर्थपूर्ण है, चाहे मंजिल कभी ना मिले।
हाँ, शायद अनिश्चितता को अपनाना ही इस जटिल दुनिया में जीने का एक तरीका है। सवाल पूछते रहना, जवाब मिले या ना मिले।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।